जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजनावल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजनावल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनावल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमोनतीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Radha Giridhare Radha Giridhare Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Hariba, Hariba, Hariba. Hare bol nitai gaura jaya jaya prabhupada 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 Srila Prabhupada ki jaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nascha prayesha bhadresho Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike Srimad Bhagavatam Skanda 9 Adhyaya 3 Shloka Sankhya 21 Katam Matihi Te avagata anyatha satam kulaprasute kuladushanam tu idam bibharshi jaram yat apatrapa kulam पितुः च भर्तुः च नयसि अधः तमः कथं मतिस्ते कतन्यता सताम् कथं मतिस्तेव गदासन्यता सताम् कुलप्रसूते कुलदूषणं विदम् कुलप्रसूते कुलदूषणं विदम् कुलप्रसूते कुलदूषणं पिदम् बिभर्षिजारं यत्पतत् यत्पत्रपाकुलम् बिभर्षिजारं यत्पत्रपाकुलम् पितुश्च भर्तुश्च नयश्चतस्तमः पितृश्च भर्तुश्च नयश्चतस्तमः कथं मतिस्तेव गदान्तया सताम् कुलप्रसूते कुलदूषणं विदम् कुलप्रसूते कुलदूषणं विदम् विवर्षिजारं यदपत्रपाकुलम् निवर्षिजारं यदपत्रपाकुलम् पितृश्च भर्तुश्च नयस्तदत्तत्मः पितृश्च भर्तुश्च नयस्तदत्तमः कुलप्रसूते कुलदूषणं त्विदम् विभर्षिजारं यदपत्रपाकुलम् पितुश्च भर्तुश्च नयश्च दस्तमः संभविष्टे नमकाभिमास्तुकम् कुलाक्रसूते कुलदूषणं त्विदम् गर्षिजारं यदपात्रपाकुलम् पितुश्च भर्तुश्च नयश्च दस्तमः मृत्तेम् कुलप्रसूते कुलदूषणं त्विदम् गर्षिजारं यदपात्रपाकुलम् पितुश्च भर्तुश्च नयश्च दस्तमः मतिस्ते गदात्मकास्तताम्
आप इस प्रकार हैं, कथम कैसे मति ही ते तुम्हारी चेतना अवगता नीचे चली गई, अन्यथा सताम सर्वाधिक पूजा कुल प्रसूते हे पुत्री कुल में उत्पन्न कुल दूषणम कुल कलंक तु लेकिन इदम यह विवर्षी पाल रही हो जारम परपति को यत क्योंकि अपत्रप लज्जा रहित है कुलम कुल पितुः तुम्हारे पिता का च तथा भर्तुः पति का च तथा नयसी नीचे ले जा रही हो अधतमः नीचे अंधकार या नरक में। अनुवाद और तात्पर्य इस ज्वाइन ग्रेस एसी भक्ति विधान दस स्वामी श्रील प्रभुपाद जी और श्रील प्रभुपाद की जय। हे पूज्य कुल में उत्पन्न मेरी पुत्री, तुमने अपनी चेतना को इस तरह इतना नीचे गिरा दिया। तुम किस तरह परपति को इतनी निर्लज्जा पूर्वक पाल रही हो, इस तरह तुम अपने पिता तथा अपने पति दोनों के कुलों को नरक में धकेल देती हो। तात्पर्य यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वैदिक संस्कृति के अनुसार यदि कोई स्त्री अपने विवाहित पति के रहते दूसरा पति स्वीकार करती है तो वह अपने पति के कुल तथा पिता के कुल को डुबाने वाली मानी जाती है। आज भी इस विषय में ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों के सम्मानित कुलों में वैदिक संस्कृति के विषयों का दृढ़ता से पालन होता है। इस विषय में केवल शूद्र ही पतित होते हैं। वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य कुल में स्त्री को स्त्री के लिए विवाहित पति की उपस्थिति में दूसरा पति उपस्थिति में दूसरा पति स्वीकार करना या विवाह विच्छेद करना या परपति को प्रेम बनाना अमान्य है। अतएव राजा शर्यति चवन मुनि के स्वरूप परिवर्तन की असलियत न जानने के कारण अपनी पुत्री के ऐसे आचरण को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। ओम ज्ञान विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामेहं ददाति स्वापदान्तिकम् वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणलिता श्रीशाकान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धव दीनबन्धव जगत्पते गोपेश गोपिका कांतराधा कांतरमोस्तुते तत्कांचन गौरांगिराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रीं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो ये प्रसंग चल रहा है चवन ऋषि और कन्या जो शर्यति की पुत्री है उनका विवाह हुआ। अभी कुछ समय के बाद विवाह होने के कुछ समय के बाद उनके पिताजी वापस आए तो आके उन्होंने देखा उनकी पुत्री को। किसके साथ देखा? उनकी नौजवान पुरुष के साथ देखा। लेकिन उनको पिता को मालूम है कि मेरी पुत्री का विवाह चवन ऋषि के साथ हुआ था जो अति वृद्ध थे। ये प्रसंग आप सबको मालूम है, पिछले कुछ दिनों से चल रहा है कि चवन ऋषि अति वृद्ध हुए। कुछ समय का उनको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे युवावस्था को प्राप्त करना है। जब अश्विनी कुमार को मैं जाके कहा कि मैं आपको सोमरस देता हूं, आप मुझे युवावस्था को प्रदान किए, युवक जैसा शरीर मुझे प्रदान कीजिए, तो जिसमें कहा हम करते हैं। तब आप जानते हैं कि उनको एक सरोवर में लेके गए और सरोवर में जैसे नहा के बाहर निकले ऐसा लग रहा था कि ये तीनों में कौन है उनको माई नहीं मालूम पड़ रहा था। तीनों एक ही जैसे लग रहे थे, दो अश्विनी कुमार और एक चवन ऋषि। वहां तेजस्वी जैसे इतना सुंदर प्रकाश उत्पन्न होता उनके शरीर से, चवन ऋषि के शरीर से। तो ये तो भागवत में इस प्रकार वर्णन है, कहीं और भी वर्णन है कि चवन ऋषि को अश्विनी कुमारों ने कहा कि आपकी ये अवस्था कमाश बना हमेशा बना के रखने के लिए और आपको क्या करना होगा, एक कुछ दवाई खाना होगा। वो दवाई का रेसिपी बनाते हैं अश्विनी कुमार, अभी वो दवाई है च्यवनप्राश। जो च्यवनप्राश आपको बाजार में मिलता है ऐसे डुप्लीकेट, तो असली च्यवनप्राश बनाने जाएंगे आप, कम से कम एक किलो बनाने के लिए 5-10 हजार का खर्चा होगा। वो मिलता भी नहीं है आइटम। जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णन है च्यवनप्राश कैसे बनाना चाहिए, ये हमारी मूर्खता क्या है, हम बच्चों को च्यवनप्राश खिलाते हैं। ये वृद्ध लोगों को युवावस्था को प्राप्त करने के लिए अश्विनी कुमारों ने च्यवनप्राश खाने के लिए कहा, लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों को खिलाते वो खा के और बुढ़े हो जाएंगे। तो आजकल मार्केटिंग रूप चल रहा है च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि इस रूप में प्रसिद्ध है आजकल, च्यवनप्राश के रूप में प्रसिद्ध है, इससे मुझे च्यवनप्राश। ठीक है, जो भी है, अभी जैसे उनके पिताजी आए, सरयती आए, आके अपनी उनकी पुत्री को देखा, किसके साथ देखा, कि उन्हें देखा एक जवान पुरुष के साथ देखा, तुरंत उनको उनके मन में आया कि उनकी पुत्री ने क्या किया, च्यवन ऋषि को त्याग कर दिया और एक जवान पुरुष के साथ वो अपनी पति बना के वो रह रही है। उन्होंने ये आगे पूछा भी नहीं, ये क्या किया तुमने, कुछ नहीं पूछा, कौन है, कोई परिचय नहीं पूछा, तुरंत जैसे उन्होंने प्रणाम किया उनको डांटना शुरू किया अपनी पुत्री को। सबसे पहला कल हम देखते हैं कि उन्होंने डांटा कि क्या है, व्हाट हैपेंड टू यू, असती, ये असती स्त्री हो। इस प्रकार कल डांट के आज अपनी आश्चर्य को व्यक्त कर रहे हैं उनके पिताजी। क्या आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, खत्म, खत्म शब्द के द्वारा वो आश्चर्य को व्यक्त कर रहे हैं। क्या आश्चर्य है कि कुल प्रसूते, दूसरा लाइन में पहला शब्द है कुल प्रसूते, इतना सुंदर अच्छा कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ है, सूर्य वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, कुल प्रसूते कुलदूषणम पिदम, ऐसा कार्य क्यों किया जिसके द्वारा हमारा कुल का दूषण हो। तो जब अपनी पुत्री अब कोई पराय पुरुष के साथ या उनके साथ रहने लग जाती है या उनके प्रति उनका मन आकर्षित होता है, पिताजी को बहुत चिंता होता है, माता पिता को बहुत चिंता होता है। ये संस्कृति है, वैदिक सभ्यता है। तो अगर एक बार देखा जाए ऐसा लग रहा होगा कि अरे पिताजी है ऐसा क्यों डांट रहे पुत्री को, वास्तविकता पूछना चाहिए, ऐसा शंका नहीं करना चाहिए पुत्री के ऊपर, ऐसा डांटना नहीं चाहिए। लेकिन ये माता पिता का स्वभाव है, ये माता पिता का हमेशा ये सतर्क रहते हैं कि अपनी पुत्री उनका मन इधर उधर ना जाए, कहीं पराये पुरुष प्रति ना सोचे, इसके बारे में विचार करते हुए अपनी पुत्रियों को संभाल के रखना कि माता पिता का परम कर्तव्य है। लेकिन आजकल ये सारे जितने भी बच्चियां हैं वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता बहुत बंधन में डालते हैं हमको, हमको वो करने नहीं देते, ये करने नहीं देते, बाहर जाने नहीं देते, और हम बाहर जाएंगे तो हमेशा नजर रखते हैं कहाँ गया था, पूछते हैं, हमको फ्रीडम चाहिए। लेकिन इस प्रकार का जो बंधन है वो उस पुत्री के लिए बहुत अच्छा है, उस बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अगर उस प्रकार का बंधन नहीं रहेगा, वो डर नहीं रहेगा, अगर डर नहीं है निश्चित रूप में, जैसे अर्जुन ने कहा भगवान को भगवद्गीता का पहला अध्याय है कि सबसे पहला समाज में क्या होता है, अगर युद्ध होगा तो, युद्ध होगा तो क्या होगा, सारे जितने भी बड़े लोग होंगे, पिता होंगे, घर के बड़े लोग होंगे, वो सब युद्ध में मर जाएंगे या युद्ध में रुचि लेंगे, और समाज में क्या होगा, सबसे पहला स्त्रियों के मन में प्रदूषण आएगा। जैसे कुलधर्मा सनातना कुलधर्मे नष्टा, क्या होता है, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, सबसे पहला समाज में स्त्रियों के मन में प्रदूषण उत्पन्न होता है। प्रदूषण का अर्थ क्या है कि विवाहित हुए बिना कोई पुरुष के बारे में सोचना या विवाहित होने के बाद कोई पराये पुरुष के बारे में विचार करना, इसको प्रदूषण कहा जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को ज्यादा ऊंचा स्थान नहीं दिया गया है, उनको बहुत निम्न देखा गया है, उनको कम बुद्धि वाले करके माना गया है, और हमेशा जितने भी नियम कानून हैं, बंधन हैं, सब उन्हीं के लिए है, और पुरुषों को छूट दिया गया है। और डांटा जाता है तो सबसे ज्यादा डांट जो है स्त्रियों को मिलता है, लड़कियों को मिलता है, और इतना हद तक कि माता पिता सोचते हैं कि हमको एक पुत्र हो, पुत्री नहीं चाहिए। तो इनको ऐसा निम्न क्यों देखा गया? ये गलत बात है, गलत धारणा है। जब स्त्रियों को रक्षा मिलना चाहिए, ये बात जब वेदों में स्पष्ट कहा गया है, बचपन में पिता का, युवावस्था में पति का, और वृद्ध अवस्था में पुत्र का रक्षा मिलना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप उसी चीज को रक्षा करते हो जो अमूल्य है। मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसे रद्दी पड़ा हुआ है, क्या उसको तिजोरी में रखते हो? रद्दी को तिजोरी में किस चीज को रखते हो? सोने को रखते हो, जेवर को रखते हो, जो अमूल्य है, जो बहुत कीमती है, उसी चीज को आप तिजोरी में रखते हो। तो आप बोलोगे तिजोरी में ये अमूल्य वस्तु है, रखोगे? नहीं नहीं नहीं, हमने तिजोरी में रखा क्योंकि मालूम है ये निम्न है, निम्न चीजों को तिजोरी में नहीं रखा जाता है, अमूल्य वस्तु को तिजोरी में रखा जाता है। तो वैसे ही समाज में जो अमूल्य व्यक्ति हैं उनको बहुत ज्यादा सुरक्षा दिया जाता है, है कि नहीं? जैसे राजा है, प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रहता है, वो कहां जाता है, कहां जा रहा है, सब निरीक्षण किया जाता है, वो जाने से पहले बराबर जगह जा रहा है कि नहीं वो भी जांच किया जाता है कि नहीं? तो प्राइम मिनिस्टर सोचेगा कि मेरे ऊपर इतना बंधन क्यों है? अरे भाई आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो इसलिए बंधन है। तो ये बंधन शास्त्रों में स्त्रियों के ऊपर इसलिए डाला गया है क्योंकि अगर उधर प्रदूषण आता है, उनको खतरा होता है, तो समाज के ऊपर बहुत गहरा असर रहता है। मान लीजिए कोई लड़का थोड़ा सा कोई इधर बिगड़ गया तो उसको दो तीन लाफा मार के सुधर सकते हैं, लेकिन अगर कोई लड़की के मन में प्रदूषण अंदर आ गया, पराय पुरुष के प्रति, उनको उनकी मन से वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहला उनको बहुत प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो इसलिए ज्यादा बंधन जो है स्त्रियों के लिए, और खास करके जो नौजवान युवतियां हैं उनके ऊपर ज्यादा बंधन है। जैसे लड़कियों का 7-8 साल का उम्र के बाद माता पिता उनके ऊपर बहुत नजर रखते हैं, ये वैदिक सभ्यता है। लेकिन आजकल की सभ्यता जो है वो सोचते हैं कि अरे मेरे लड़के का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो कैसी लड़कियां हैं, ऐसा लोग विचार करते हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार अगर जरा सा भी माता पिता को मालूम पड़ता है कि ये किसी और के बारे में सोच रही है, कहीं और से ज्यादा बात हो रहा है, तुरंत बहुत मारते भी है। हमने हमारी संस्कृति में गांव में देखा है, कभी कभी ऐसा कुछ घटना हो जाता है तो माता पिता उस बच्ची को बहुत मार के उसको एक बहुत सजा देते हैं और घर से बाहर जाने नहीं देते। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि आगे की जो संतान है, आगे का जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को धर्म का शिक्षा देना, उनकी चेतना को ऊंचा बना के रखना का जिम्मेदारी है वो माँ का होता है। चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति का सबसे पहला गुरु अपनी माँ है। क्यों? जैसे गर्भ में बच्चा रहता है उस समय भी सीखता है, क्या सीखता है? माँ जो जो कार्य सुनती है, जो जो चीजें सुनती है, जो जो चीजें बोलती है, वो ये सब सीखता है। जैसे बच्चा बाहर निकलता है, जो भी माँ जिस प्रकार व्यवहार करती है उसी प्रकार वो बच्चा व्यवहार करता है। तो सबसे पहला गुरु है माँ। तो अगर उस स्त्री को अगर संरक्षण नहीं किया जाए, उनके मन में प्रदूषण होगा तो आगे आने वाले पीढ़ी के मन में भी प्रदूषण होगा और उनकी चेतना बहुत नीची हो जाएगी। इसलिए बच्चों की, खास करके स्त्रियों की चेतना को ऊंचा बना के रखने के लिए समाज में उनके लिए बहुत सारा बंधन दिया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह, ये बंधन हमारे लिए अच्छा है। जैसे हम कुछ नियम पालन करते हैं, ये नियम पालन करने के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होता है। हम नियमों से मुक्त हो जाएंगे, बहुबंधन में फंसेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। जैसे इस संसार में अगर आपको स्वेच्छा के साथ घूमना है तो आपको ये संसार के या देश के नियम पालन करना होगा। जितना आप नियम के बंधन में आएंगे उतना आप मुक्त होंगे। लेकिन आजकल क्या सोचते हैं, नियम से मुक्त होना ही मुक्ति है। नहीं, नियम से मुक्त होना मुक्ति नहीं है, नियम के बंधन में रहना वो वास्तविक मुक्ति है। तो लोग सोचते हैं कि बहुत सारे नियम कानून है, इसको तोड़ो। नियम कानून को तोड़ने से हम और बंधन में आएंगे, इसलिए नियम कानून के बंधन में रहना ये अति आवश्यक है। खास करके जब किसी कन्या का विवाह हो जाता है, ये विवाह जो है एक बंधन कहा जाता है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे से मिलके एक साथ में रह के भक्ति करने का संकल्प लेते हैं, उसको विवाह कहा जाता है। तो विवाह एक बंधन है, वो विवाह का जो बंधन है वो स्त्री के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग, या कुछ दिन पहले की बात है, कोई माता ने मुझे फोन किया, वो पता नहीं रेगुलरली आती है कि नहीं, मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम बोल के उन्हें बोल रही हूँ। मैंने बोला आप कौन है मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा कि आपके आश्रम में महिलाओं को संन्यास मिलता है। मैंने कहा ऐसा नहीं मिलता इधर। तो कौन से आश्रम में मिलता है? मैंने कहा कि गृहस्थ आश्रम में मिलता है। तो गृहस्थ आश्रम ही उनके लिए संन्यास। तो ये विवाह से, बंधन से छुटकारा पाने का जो प्रयास है वो पुरुष को करना चाहिए, और आजकल की माताएं करने चाहते हैं, ये कलयुग है। लेकिन वो विवाह के बंधन जो है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए शास्त्रों में कोई सन्यासिनी करके कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दैट, क्योंकि हमेशा उनके बंधन में रहना अति आवश्यक है। वो बंधन में रहना, विवाह के परिवार के बंधन में रहना, ये उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उनके लिए सही है। लेकिन पुरुष के लिए क्या है, वो बंधन से कब मुक्त हो जाऊं उसके हमेशा प्रार्थना करना चाहिए या मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कलयुग है टोटल उल्टा चलता है। क्या हो रहा है, पुरुष सोचता है कि नहीं अभी मैं और बंधन में फंसना चाहता हूं। माताएं सोचती है बस मुझे डाइवोर्स लेना है। ये डाइवोर्स लेना जो है ये मुक्ति नहीं है, इट इज नॉट लिबरेशन। आजकल एक बड़ा आंदोलन चला है, अमेरिका से आया है एक्चुअली, इधर आया भारत में, उसका है नारी मुक्ति आंदोलन, वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट। लेकिन ये नारी मुक्ति आंदोलन जो है वो केवल समाज में उत्पात और भ्रष्टाचार फैलाने के लिए। वो लोग कहते हैं कि वैदिक संस्कृति हमको दबा के रखे है, नहीं अभी हम खुला होना चाहते हैं, हम जैसे पुरुष चलते हैं उसी प्रकार हम भी चलना चाहते हैं, जैसे वो कपड़ा पहनते हैं हम भी वैसे कपड़ा पहनना चाहते हैं, जैसे वो बाल बनाते हैं हम भी ऐसे बाल बनाना चाहते हैं। लेकिन ये मूर्खता है। ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये अस्वाभाविक तरीके से रहना या रहने से कोई सुखी नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति का जिस प्रकार की मानसिकता भगवान ने दिया है उस मानसिकता के अनुसार उनको जीना चाहिए। भगवान ने स्त्रियों का एक मानसिकता दिया है, उनके पास बहुत सारे शक्तियां सामर्थ्य सब कुछ दिया है, लेकिन एक चीज जो है वो भगवान ने नहीं दिया है, जिसके द्वारा वो हमेशा उनके पुरुष के शरण में उनको रहना होगा, जिसके वजह से वो सुरक्षित रहेंगे। अगर वो सुरक्षित रहेंगे समाज भी सुरक्षित रहेगा। क्या है वो एक चीज स्त्रियों में जो कमी दिया है भगवान ने, वो कमी उनकी अच्छाई के लिए दिया है। क्या है वो कभी भी कोई चीज का निर्णय नहीं ले सकते। अगर आप उनको बोलो दो चीजें दो, आपको दोनों में एक लेना है, क्या लेना दे ले लो, कोई बोलेंगे ये लेना है, नहीं नहीं ये चाहिए, ऐसा उनका मन जो है भटकता जाएगा। तो ये जो कोई भी चीज का निर्णय जो है वो कभी नहीं ले सकते। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, उनको ये कमी देके उनको हमेशा या पिता के शरण में या पति के शरण में या वृद्ध होने के बाद पुत्र के शरण में रखने का दिया। अगर ये चीज, ये शक्ति भगवान ने दिया होता स्त्रियों को, पूरा संसार जो है उसको काबू में रखते हैं। खाली एक चीज उनकी कमी है, उनके पास बहुत बुद्धि होता है, भौतिक बुद्धि इतना रहता है कि हर चीज को वो संभाल सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज करने के लिए ये करो यही करना है बोलने वाला एक व्यक्ति पुरुष चाहिए। तो ये भगवान ने इस प्रकार की स्वाभाविक व्यवस्था बनाया नेचरली हैज डन इट. क्यों? ताकि वो शरण में रहे. तो ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्त्रियों को हमेशा कोई ना कोई पुरुष का शरण में रहना चाहिए, खास करके विवाह होने के बाद उनके पति के शरण में रहना चाहिए. तो आजकल की स्त्रियों का एक कंप्लेंट रहता है, ये तो सही बात है लेकिन हमारा पति जो है वो योग्य नहीं है. भले ही कितना भी योग्य ना हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका पति है. तो इसके विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा जाता है वेदों में. जब विवाह होता है, जिस दिन विवाह होता है, विवाह संस्कार के दिन कुछ मंत्रों को उच्चारण किया जाता है. उस समय उस मंत्रों के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे. अस्तित्व में इस जगत में एक ही मात्र व्यक्ति है जो हमको शरण दे सकते हैं कोई भी जीव को, वो कौन है? वो है कृष्ण. तो कृष्ण ही एकमात्र चीज है जो हमको शरण दे सकते हैं. तो उस मंत्रों में एक आता है वराय विष्णु रूपाय. वराय का अर्थ है जो विवाह करने वाला जो अभी लड़का है उसको वर कहा जाता है. तो उन मंत्रों में ये शब्द इस्तेमाल किया था वराय विष्णु रूपाय. भगवान स्वयं आके आपको शरण नहीं दे सकते अभी, इसलिए भगवान ने क्या किया, उस व्यक्ति को भेजा आपको शरण देने के लिए. तो भगवान ने आपको उस व्यक्ति को चुन के आपके पास भेजा है. उनको छोड़ के कहीं और को कहीं किसी और के शरण में जाना ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध माना जाता है, इसलिए असती. तो ये वर जो है पति को भी सोचना चाहिए, मैं शरण देने वाला होता कौन हूं? अस्तित्व में भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं वो जो स्त्री है जो वास्तविकता में भगवान की पत्नी है उनको मैं थोड़ा समय के लिए संरक्षण दे रहा हूं. ये मनोभावना से विवाह होता है. इन लोग सोचते हैं कि हमारी शादी है, किससे कर रहे हो? इससे कर रहे हो. अस्तित्व विवाह जो है उस दिन किससे हुआ है? वो विवाह वास्तविकता में कृष्ण से हुआ है. और कृष्ण स्वयं आके आपको देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण ने उस वर को भेजा, इसलिए वराय विष्णु रूप आया. और उस दिन वो लड़के को सोचना चाहिए अच्छा मैं उनका शरण दे रहा. नहीं नहीं नहीं, यू आर जस्ट ए रिप्रेजेंटेटिव. तो इधर ये वैदिक सभ्यता के पीछे बहुत सुंदर दर्शन है, देयर इज अ ग्रेट फिलॉसफी बिहाइंड इट. तो कुछ लोग माताएं कहते हैं नहीं नहीं हम तो कृष्ण के पति है, कृष्ण का ही सेवा करेंगे. अरे कृष्ण का पति है तो सही बात है, कृष्ण का ही पति है, लेकिन कृष्ण ने आपकी पति को भेजा है. सबसे पहले आपके पति का सेवा करना, वो जो है वो परम धर्म माना जाता है. तो ये पतिव्रता धर्म जो है अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है. ऐसा कहा गया है जिसके अंदर ये पतिव्रता सतीत्व है वो सतीत्व महान ऋषियों को भी पवित्र करने वाला है. ऐसा बचपन में हमको ये आदत डाला गया था कुछ मंत्रों को उच्चारण करने का, सोने से पहले और उठने के बाद उठने के समय. जैसे हम भी जब भक्ति में आने के बाद कुछ मंत्रों को उच्चारण करते, गुरु प्रणाम मंत्र करते हैं. तो बचपन में राम का जो स्तुति है, हनुमान का जो स्तुति है, वो स्मरण करके सोने का आदत डाला गया था. जो सुबह उठते ही कुछ मंत्रों को उच्चारण करने का आदत डाला गया था, अभी भी मुझे वो याद है. वो एक मंत्र, उसका अर्थ तो हमको मालूम नहीं था, ऐसे बोल लेते थे. उसमें ये है अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंडोदरिता पंचकन्यास्पर नित्यम महापातक नाशनम. ये मंत्र बड़े बड़े सन्यासी भी उच्चारण करते हैं. ऐसे सन्यासियों को कहा जाता है, ब्रह्मचारियों को कहा जाना चाहता है आप स्त्रियों का स्मरण मत करो. लेकिन ये श्लोक में क्या कहा गया है, ये पांच कन्याओं का स्मरण करो. क्या कहा? अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंडोदरी. कहीं कहीं अहल्या, द्रौपदी, कुंती श्लोक भी आता है, कुंती में कभी कुंती शब्द भी आता है. अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंडोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम. ये पांच कन्याओं का आप नित्य स्मरण करो तो क्या होगा, महान महान पापों से आप बच जाओगे. ये सही बात है. पंच कन्या स्मरे नित्यम, आप प्रश्न उठाओगे ये तो कन्याएं नहीं थी. कन्याएं का अर्थ क्या है, जिनका विवाह नहीं हुआ वो कन्या है. लेकिन अभी ये पांचों का विवाह हुआ है. अहल्या, अहल्या का किसके विवाह हुआ था? गौतम ऋषि से विवाह हुआ. और द्रौपदी, उनका पांच पांच पति हैं. और अहल्या, द्रौपदी, सीता, रामचंद्र से. और कुंती अगर लेंगे तो पांडु से विवाह हुआ. अहल्या, द्रौपदी, सीता, कुंती या सीता, द्रौपदी, तारा, मंडोदरी. तारा कौन है? वाली के पति है. पत्नी है और तारा मंडोदरी किसकी पत्नी है, रावण की पत्नी है। अभी ये देखेंगे इनकी जो पांचों की जो चरित्र है, अगर बहिरंगी दृष्टिकोण से देखा जाए, अहल्या अहल्या पहचान नहीं पाई कौन आया मेरे साथ में, कौन आया था, इंद्र आया था, वो किसका, गौतम ऋषि का रूप धारण करके आए। तो इंद्र ने अहल्या के साथ संग किया, तो ये कन्या होने के छोड़िए तो वो तो पर पुरुष के साथ उन्हें संग किया। दूसरी बात, अहल्या द्रौपदी उनके पांच पांच पति है, ये शास्त्रों में देखा गया है कि एक पुरुष जो है वो ज्यादा पत्नियों को स्वीकार कर सकता है, क्षत्रिय हो तो, या ब्राह्मण भी कभी कभी कर सकता है कोई कुछ कारणवश, लेकिन कलयुग में वर्जित है। तो एक स्त्री को पांच पति होना, ये तो शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। अभी तीसरी बात, अहल्या द्रौपदी सीता, सीता पराय पुरुष के साथ में एक साल तक रही। सीता तारा वो बाली मरने के बाद उनका विवाह सुग्रीव से हुआ, ये रामायण में स्पष्ट कहा गया है। और मंडोदरी वो क्या कहती थी, हमेशा अपने पति को उपदेश देती थी, पति का आज्ञा को पति को मानना चाहिए और पति को पति गुरु के रूप में मानना चाहिए, पति को उपदेश देने के लिए नहीं जाना चाहिए। अभी हमेशा मंडोदरी क्या करती थी, रावण को बोलती थी। और बाद में ऐसा कुछ रामायण में वर्णन है कि उनका विवाह जो है विभीषण से हुआ रावण का मृत्यु के बाद। तो ये कहां का पतिव्रता है, अभी पतिव्रता को छोड़िए, उनको तो कन्या कहा गया, उनको तो ऐसा कहा गया है कि अगर जो व्यक्ति इन पांच लोगों का स्मरण करता है निश्चित रूप में उनके पाप जो है वो नाश हो जाते हैं। इसको कैसे समझे, बड़ा विचित्र बात है ये शास्त्र। तो हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, अहल्या अहल्या उनका क्या गलती था, उनका कुछ गलती था, वो इंद्र ने उनको प्रदूषण किया, लेकिन जैसे गौतम ऋषि आए उनको उन्होंने शाप दिया। क्या शाप दिया, कि आप एक पत्थर बन जाओ। लेकिन अहल्या ने एक भी बात कहा कुछ स्वीकार किया, आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं करने के लिए। और इतनी नम्रता, यानी उनका कोई गलती नहीं था, गलती नहीं होने पर भी उनको शाप मिला, वो सुनने के बाद भी वो चुप रही, लेकिन पति ने अच्छी गलती गौतम ऋषि का था, उन्हें बिना पूछे, इधर भी ऐसे प्रसंग में चल रहा है, इधर उनकी पुत्री का क्या गलती है, गलती तो है नहीं, अस्तित्व में उन्होंने इतना अच्छा सेवा किया पति का, पति प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया, एक नौजवान पुरुष का रूप धारण किए अश्विनी कुमार उनकी सहायता से। अभी इधर उनके पिताजी उनको डांट रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना भी डांट सुन के ना आओ ना ही कुछ कंप्लेन नहीं। इसलिए अहल्या को जो स्मरण करता है उसका पाप नाश होता है। और इसको देखे गौतम ऋषि ने कहा, ठीक है आशीर्वाद देता हूं, क्या आशीर्वाद देता हूं, भगवान रामचंद्र का चरण का स्पर्श होगा तब वापस रूप में सही रूप में आ जाओगे। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, भगवान रामचंद्र के प्राकट्य के पीछे अनेकों कारण है, उनमें से एक कारण है अहल्या का उद्धार करना। अहल्या की सतीत्व को देख के भगवान रामचंद्र ने क्या किया, इतना हद तक तो छोड़िए उन्होंने युग अंतर कर दिया था। ये युग जो है हमेशा सत्ययुग के बाद कौन सा आता है, सत्य के बाद, हाँ सत्य के द्वापर आता है, द्वापर का अर्थ क्या है दूसरा, द्वापर के बाद क्या आता है, त्रेता आता है, बाद में कलयुग आता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, सत्य के बाद क्या आया, त्रेता आया। क्यों आया, क्योंकि अहल्या को उद्धार करने के लिए, क्योंकि त्रेता युग में भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं, रामचंद्र ने सोचा कि मैं जल्दी प्रकट हो जाऊंगा, प्रकट होकर अहल्या का मैं उद्धार करूंगा। तो अगर जब किसी का हम चरित्र के बारे में श्रवण करते हैं बहिरंगिक रूप में देखा जाए तो वो चरित्र में लगता है कि कुछ कलंक है, कुछ लोग कहते हैं क्या क्या कैसे कैसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं पुराणों में, लेकिन उसके पीछे जो गहराई से सिद्धांत के अनुसार हमको समझना होगा। अहल्या द्रौपदी, द्रौपदी लोग कहते हैं इनके पांच पांच पति हैं, अपने प्रेम को कैसे बांटेंगे, ये पतिव्रता थोड़ी ना हुआ। में द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई है। अग्नि से प्रकट हुई, जैसे दशरथ प्रकट हो उसके साथ साथ द्रौपदी प्रकट हुई, और द्रौपदी को रक्षा देने के लिए 5 पतियों की आवश्यकता है। वो इतनी शक्तिशाली है, शी सो पावरफुल, क्योंकि पति का अर्थ कौन है? जो रक्षा प्रदान करता है। आप मान लो कोई एक छोटा मोटा व्यक्ति है, उसको रक्षा प्रदान करना है। मान लो एक रास्ते में घूमने वाला कोई व्यक्ति है, उसको रक्षा करने के लिए कांस्टेबल की जरूरत है, और प्राइम मिनिस्टर को रक्षा करना है तो बड़ा फौज की जरूरत है कि नहीं? तो जितना शक्तिशाली होती है उतना शक्तिशाली रक्षक भी होना चाहिए, है कि नहीं? ये द्रौपदी की महत्ता इतना है, वो इतनी शक्तिशाली है अपने पतित्व में, उनको रक्षा करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है, इसलिए 5 पति है। तो लोग इस बात को नहीं समझ पाते, लोग सोचते हैं द्रौपदी की 5 पति है, लेकिन पति का अर्थ है रक्षक। वो इतने शक्तिशाली रक्षक की आवश्यकता क्यों है? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर साधारण लोग थोड़ी ना है। इतने शक्तिशाली लोग 5 रक्षक होंगे तभी द्रौपदी जो है उनकी शीलता जो है बना के रख सकती है। और तीसरा, अहल्या, द्रौपदी, सीता, सीता के बारे में जानते हैं कि उनकी सतीत्व की परीक्षा कहां कहां नहीं हुआ, अग्नि में प्रवेश की, कुछ नहीं हुआ। भगवान रामचंद्र ने कहा, नहीं ये कौन है मुझे नहीं मालूम, मैं लेके नहीं जाऊंगा। सारे लोग दंग हो गए, सीता तैयार हो गया अग्नि में प्रवेश करने के लिए। वापस दूसरी बार सीता को रामचंद्र ने क्या कहा, जाओ लक्ष्मण को, इनको छोड़ दो, वन में छोड़ दो, क्योंकि इसकी वजह से मुझे मेरा खराब नाम आ रहा है, लोग जो है मेरा राजा के ऊपर थोड़ा सा भी कलंक नहीं होना चाहिए, तो सीता की वजह से मुझे कलंक आ रहा है, लक्ष्मण सीता को छोड़ दो जंगल में। सीता को छोड़ दिया जंगल में, सीता को छोड़ दिया जंगल में, क्या हुआ, वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी सीता। उधर भी जितने भी लोग थे वो सब लोग भी बोलने लगे, क्या है पता नहीं कौन सा स्त्री कहां से आई है, और 2 बच्चे भी है, गर्भवती है, पति उसको घर से क्यों निकाला, कुछ तो गड़बड़ किया होगा तभी तो निकाला है ना। आश्रम के जितने भी ब्रह्मचारी है और जितने भी लोग थे उधर वाल्मीकि आश्रम में, वो सब बात करने लगे। तो वाल्मीकि को मालूम पड़ा, तो वाल्मीकि ने सब बुलाया, कहा कि जानते हैं कौन हो? वो लोग जो है वो बोलने लगे कि आश्रम में एक ऐसा स्त्री को रखना ये सब उचित बात नहीं है, ऐसे ऐसे लोग बोलने लगे। तब वाल्मीकि ने कहा, ठीक है, उनका सतीत्व की परीक्षा करने के लिए आप क्या करना चाहते हो बताओ। तब उधर के जितने भी उनके वाल्मीकि से शब्द मीटिंग किए, मीटिंग करके कहा, एक सतीबा शाला करके एक बड़ा सा एक तालाब है जो बहुत गहरा है और बहुत चौड़ा है, हिमालय तक उसका ये है। अयोध्या कहाँ है, अयोध्या के नजदीक में उनका वाल्मीकि का आश्रम है, उधर से पूरा हिमालय तक उसका विस्तार है उस तालाब का। ये तालाब का इतिहास ऐसा है, एक पक्षी, 2 पक्षी निवास करते हैं, पति पत्नी। तो जो पति पक्षी है बाहर गए थे, वापस जाने के बाद उनकी पत्नी के ऊपर शक आया, तो पति बहुत निम्न विवाह से बोले, नहीं 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 मेरा मन किसी और के ऊपर नहीं है। मैंने कहा ऐसा है तो ये जो क्षतिपाशाला जो लेक है उसको पार करो। ये पक्षी पार किए थी, तब उसके सतीत्व को माना गया, तब से उसके नाम है सतीबा, क्योंकि उस पक्षी के नाम का सतीबा। तब ये लोगों ने कहा कि इनको भी ऐसी परीक्षा लेना चाहिए, सीता को भी। तो सीता जी ने कहा, किया भगवान रामचंद्र से स्मरण करते हुए, की बोले लगी, आपके अलावा और कोई की और किसी के बारे में अगर स्मरण किया है तो मैं इसी तालाब में डूब जाऊंगी। तो जैसे उन्होंने कूदा सीता, उन्होंने स्विमिंग में कुछ नहीं किया, वो लहरों के प्रभाव से पूरा तालाब को पार किया। कितना लंबा, कहां अयोध्या है कहां हिमालय है, वो पूरा पार करके वापस आई लहरों के प्रभाव से। तो सब लोगों ने स्वीकार किया। तो सीता की कितनी कितनी परीक्षा, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमेशा उनकी आंखों से आंसू गिरते थे, और जब उस आंसुओं से मिट्टी गीला होता था अपनी उंगली से राम नाम उस मिट्टी के ऊपर लिखती थी सीता। और लव कुश ने मना किया सीता को, ऐसे राम का नाम मत लिखो, क्योंकि मालूम नहीं था लव कुश को राम हमारे पिताजी करके, वो जाके आए थे भी जस्ट, उनको मालूम पड़ा कि रामचंद्र अभी अयोध्या में है, उनका गुणगान करेंगे, रामायण जो सीखे थे लव कुश, तो जैसे राम से पूछे कि सीता कहाँ है, तो उनको मालूम पड़ा कि राम ने सीता को वनवास में भेज दिया। लव कुश ने कहा हमने अपनी वचन शक्ति खराब कर लिया है, राम के बारे में क्यों बोलेंगे जिन्होंने सीता को स्वीकार नहीं किया है, सीता को वनवास भेज दिया है, इतने सत्य तो सीता को वापस आके जब घर में आके जिनको देखा उनकी माँ सीता लिख रही है राम राम करके, बोला इनका नाम मत सीखो, नाम ही मत लो हमको, लेकिन फिर भी सीता का जो मन है हमेशा राम में रहा। तो हल्या द्रौपदी सीता कुंती और अहल्या द्रौपदी सीता तारा, तारा के विषय में कहा गया है तारा वो वाले की पत्नी है। और तो उन्होंने जब भगवान रामचंद्र वाली को उन्होंने मारा तो उनका पुत्र था अंगद, और अहल्या ने तारा ने सोचा अंगद को मुझे राजा बनाना है, क्योंकि अंगद के बाद जो योग्यता है राजा बनने की, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा सुग्रीव से विवाह करना होगा। तो इससे उन्होंने क्या किया सुग्रीव से विवाह किया। विवाह करके होने के बाद भी भगवान रामचंद्र स्वयं तारा की सतीत्व को गुणगान करते हैं, और उन्होंने कहा कि अंगद जो है वो सीता को ढूंढने के लिए जो जाएगा नीचे की ओर दक्षिण की ओर उसका लीडर होगा। अंगद भले ही वाली का पुत्र है, भगवान रामचंद्र ने कहा ये भले ही वाली का पुत्र अस्तित्व में वो किसके हैं सारा के पुत्र होने के नाते मैं अंगद को लीडर बनाऊंगा। तो सीता को ढूंढने के लिए भगवान रामचंद्र अंगद को लीडर बनाए, कौन कौन थे हनुमान जांबवान बड़े बड़े महान हस्ती थे उस दल में जो सीता को ढूंढने के लिए गए थे, भगवान रामचंद्र अंगद को बनाया, क्यों तारा की बल पे, तारा की पतिव्रता जितना पतिव्रता जितना सत्यव्रत रहता है वैसा उतना अच्छा पुत्र प्राप्त होता है। अगर किसी को कोई भी स्त्री को सुंदर पुत्र चाहिए शक्तिशाली बुद्धिमान पुत्र चाहिए उनके लिए कोई एक ही काम करना होगा अपनी सतीत्व को बनाकर रखना होगा चस्टिटी को बना के रखना होगा, तो स्वाभाविक तरीके उनकी प्रजा बहुत अच्छी रहती है, नहीं तो उनका जो पुत्र या पुत्री जो है उनके अंदर भी कोई क्वालिटी नहीं रहता है। तो अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंडोदरी भगवान रामचंद्र मंडोदरी इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने क्या किया रावण की पत्नी होने के बाद भी मंडोदरी भगवान रामचंद्र के बारे में बताने लगी और उपदेश देने लगी रावण को, लेकिन रावण माना नहीं, लेकिन फिर भी मंडोदरी ने अपना सतीत्व कभी त्यागा नहीं। तो इसलिए पांच कन्याओं का हमेशा स्मरण करना चाहिए ऐसा शास्त्र कहता है। तो इस प्रसंग में भी हमको ये बात मिलता है कि खत्म ये चिंता होना चाहिए हर माता पिता को कि अपने बच्चे इधर उधर भटकते हैं, खासकर उनकी पुतनियां बराबर वस्त्र नहीं पहनती है या बराबर व्यवहार नहीं करती है, माता पिता को चिंता होना चाहिए। लेकिन आपके माता पिता बोलते हैं बच्चे हैं हमारी बात नहीं सुनते क्या करेंगे, नहीं उनको डांटो उनको सीधा करो, क्योंकि आप बोले सुन नहीं रहे, क्यों नहीं सुन रहे क्योंकि आपके अंदर सतीत्व नहीं है। अगर किसी के अंदर सतीत्व है या ब्रह्मचर्य है उनकी बात बच्चे सुनेंगे, कोई भी सुनेगा दे विल डेफिनेटली हियर। तो पहले हमारे अंदर ही सतीत्व होना चाहिए, हमारे अंदर ही ब्रह्मचर्य होना चाहिए। तो बच्चे देख रहे हैं एक छोटी सी बेटी है 13 साल की बेटी है वो देख रही है माँ जो है वो टीवी देख रही है, टीवी में क्या देख रही है कोई गंदी पिक्चर देख रही है, तो ये भी सोचती मैं माँ देख रही थी मैं भी करूंगी। तो माँ बोलेगी नहीं भाई इससे बात मत करो, तुम्हारे अपने बॉयफ्रेंड से बात मत करो। तो बेटी सोचती है तो मेरी माँ तुम भी तो ऐसे कर रही हो तो मैं क्यों नहीं करूंगी। तो अगर हमारे अंदर पवित्रता है हमारे अंदर शक्ति है ब्रह्मचारी है या सतीत्व है तो जरूर अपने पुत्रों को अपनी पुत्रियों को संभाल सकते हैं। तो ये जो राजा भले एक तरीके से गलत डांट रहा है वो गलत डांट में भी वो सहीपन है, क्यों है क्योंकि कोई भी अपनी पुत्री को अपना सतीत्व को त्याग करते हुए देख नहीं सकता, ये बात हमको इस श्लोक से पता लगता है। कोई प्रश्न वगैरह नहीं कोई टीका वगैरह क्वेश्चन इनका प्रश्न है कि क्या पति पति दोनों करना चाहिए एक ही करना चाहिए। अगर किसी को भी स्मरण करते हो उनके संबंधियों का भी अपने आप स्मरण होता है कि नहीं। कोई भी चीज जगत में अकेला नहीं है, भगवान भी अकेले नहीं है, बाकी सब तो छोड़िए, इस जगत में कोई भी अकेला नहीं है, उसना उसका किसी न किसी के साथ संबंध है। जैसे मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी का भी स्मरण किया तो निश्चित रूप में क्या स्मरण करेंगे, ये फलाना व्यक्ति का शिष्य है, ठीक है। जैसे आपका जो डोनर है आपका स्मरण किया और चंड को भी अच्छा अच्छा वो स्थान वाला है, संबंध तो उसी के साथ है ना, आप अकेले नहीं हो इस जगत में, आपका संबंध किसी ना किसी के साथ है, तो आपका स्मरण मतलब आपके संबंधियों के साथ भी स्मरण है कि नहीं। ऐसा नहीं कि अकेले का ऐसा स्मरण नहीं होता है, उनका विशेषों के द्वारा स्मरण होता है। हमारी विशेषता क्या है, हमारा संबंध, अनेकों विशेष है लेकिन सबसे प्रमुख विशेष है हमारा संबंध है कि नहीं। ये हाँ, कुंती माता का ये है, उस समय सती लेने का प्रथा था तो कुंती का हक बनता था सती लेना, तो कुंती का हक बनता है, लेकिन फिर भी माधुरी ने कहा हे कुंती तुम्हारे पास ऐसा सामर्थ्य है कि पति के बिना आप जी सकते हो और इन बच्चों को देखभाल कर सकते हो, लेकिन मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं। माधुरी ने इस बात को कुंती को कहा और साथ साथ में जब पांडु का मृत्यु होगा हो गया तब मैं सती लूंगी आप रहो। तब माधुरी ने कहा, तो कुंती ने कहा मैं कैसे कर सकती हूं, मेरा हक बनता है सती लेना। ने कहा कि क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ में है, कृष्ण मेरे साथ में नहीं है, तो आपकी ये कृष्ण के प्रति अविचलित भक्ति जो है वो भक्ति की शक्ति की वजह से हमारे पुत्र जो है वो बचेंगे। इसलिए भले ही आपका धर्म बनता है सतीत्व को लेना स्वीकार करना, लेकिन अभी क्या करो आप सतीत्व मत लो। तो इसमें बहुत कुछ रामायण में भी बहुत सुंदर सुंदर उपदेश है। सीता जी गई किसके पास, राम के साथ वनवास गई, क्योंकि पतिव्रता धर्म है राम के साथ जाना। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला वो क्यों नहीं गई, क्योंकि उर्मिला ने सोचा अगर मैं अपना पतिव्रता धर्म को दिखाऊं भगवान रामचंद्र की सेवा में कमी होगी, क्यों मैं लक्ष्मण के साथ जाऊंगी तो लक्ष्मण किसको मुझे संरक्षण करने में उनका ध्यान जो है प्रभु राम से हटेगा, है कि नहीं। तो कभी कभी कुछ धार्मिक चीजों को त्याग किया जाता है ऊंचे प्रकार की धर्म को पालन करने के लिए। तो इधर कुंती ने लगता है कि पतिव्रता धर्म को त्याग किया, नहीं, पति का वास्तविक अंश कौन वंश कौन है, उनके पुत्र, उनको देखभाल करना ये सती करना जो धर्म है उससे परे माना जाता है। इसलिए महाभारत के पांच लक्षण है, पांच उद्देश्य है, उन पांच उद्देश्यों में एक उद्देश्य है कुंती महारानी की अविलचित भक्ति को प्रकाशित करना। यार फाइव सब्जेक्ट जैसे भगवत में पांच विषय वस्तु है, ऐसे महाभारत का पांच विषय वस्तु है। एक है नकुल का समशीलता, कर्ण का दानशीलता, युधिष्ठिर का धर्मनिष्ठा, भगवान भक्तवत्सलता, और पांचवा क्या है कुंती महारानी की अविचलित भक्ति। जितना दुख जितने भी भक्तों ने अनुभव किया महाभारत, सबसे ज्यादा दुख किसको मिला, कुंती महारानी को, लेकिन फिर भी उन्होंने अविलचित भक्ति किया, विचलित हुए बिना कृष्ण के चरण में हमेशा उनका मति रहा। उस भक्ति को प्रकाशित करना कुंती महारानी का विशेषता है, उनकी प्रार्थना जो है उसके अंदर भी विशेषता है। क्या विशेषता है, वैराग्य उनको शिक्षा दिया, वैराग्य जीवन कैसे यापन करना चाहिए, भगवान ने एक स्त्री के मुख से करवाया, सुनो सारे वैराग्यों को, सुनो सारे सन्यासी आप सुनो, कैसे आपका जीवन यापन करना है, ऐसे जीवन यापन करना है। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कैसे शिक्षा दिया, वैसे शिक्षा वापस करो, आप ब्रह्मचारी सन्यासी रहोगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे। ये है कुंती महारानी, ठीक है। चंद्राश्रम भागवतम की श्रील प्रभुपाद की जय।